कैसे वो बीज बढ़ेगा, कैसे अंकुरित होगा, ये सब साधन है। समझ गया ना? भक्ति लता का बीज क्या है? कृष्ण की सेवा करने की वासना, कामना सजन के। लड़का पढ़ता है कब टेस्ट से?
आनंद होता है पढ़ने में,
तो मन जब वो समझता है कि इसके द्वारा हम जीवन में उत्कर्ष लाभ करेंगे, तब तो किसी भी चीज के लिए वासना होती है, कामना। ये वासना ही पीछे से मूर्ति धारण करके लौकिक दृष्टि से गांधी जी ने कामना की कि भारत को हम स्वतंत्र करें, इससे देश की राष्ट्र की सेवा होगी। उन्होंने इस चीज को समझा, उन्होंने इसके लिए प्रयत्न आरंभ कर दिया, लाखों लोगों को कलेक्शन कर लिए, लाखों लोग उनके पीछे चल रहे। किंतु स्वतंत्र हुआ भारत ना परतंत्र हुआ, ये तो दूसरी बात। क्या हुआ सर? ये वासना है, ये भक्ति का बीज है। जब ये वासना जगी, अब ये कैसे बड़े कृष्ण की सेवा कैसे पाऊंगा, कैसे पाऊंगी, इसके लिए अब हृदय से चेष्टा करने की आवश्यकता है। हमको इसको इस चीज की जरूरत है। जब जरूरत है तो उसके लिए हमको चेष्टा करना पड़ेगा। कहाँ ये चीज मिलेगी, कैसे मिलेगी? हमको ठंड लग रही है, क्या जरूरत है ठंड को दूर करने के लिए? क्या जरूरत क्या है? कुछ पैसा नहीं है तो केवल आग जला लो। गरीब लोग क्या करते हैं, देश आग जला करके आगे पीछे जला लिया, बैठ के किसी तरह से जीवन नहीं जला, पत्ते जला लिया। जो धनी आदमी है वो क्या करेंगे? हीटर तो लगेगा, पहले कपड़े टपड़े गर्म ये सब, और इसके बाद हीटर भी लग जाएगा, सब प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी। तो पहले से ये तो जरूरत है कि हमको ठंड लग रही है, हमको इसके लिए बचने की जरूरत है। इसी तरह से हर काम में कामना या वासना जो होती है, संसार में जो बधे हैं, ये मन की वासनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वासना जगी है ना, उस वासना से कृष्ण को भूल गए हैं और इस परिस्थिति में आए। इसलिए वासना के ऊपर भी सब कुछ निर्भर है। यदि कृष्ण की सेवा करने की कामना वासना हमारे हृदय में थोड़ी भी आ गई, समझो ये हमारा परम कल्याण हो, परम कल्याण। अब किसी चीज को यहाँ पर ये बतला रहे हैं। महाप्रभु जी की कृपा की वंदना कर रहे हैं, बिना भगवान के कृपा के, भगवान की ये वृत्ति, सेवा की जो वृत्ति है, ये नहीं आ सकती, ये जड़ चीज नहीं है। दो चीजों, दो जगहों में ये चीज मिलती है, एक मिलेगी भगवान के हृदय में और एक मिलेगी जो भगवान की सेवा करते हैं
उनके हृदय,
उनके हृदय भक्ति नहीं पर। या तो भगवान कृपा करें, या वैसा कोई भक्त हो पहुंचा हुआ जिसके अंदर में ये वृत्ति संपूर्ण रूप में उज्जवल रूप में है, वहां से हमको मिल सकती है। जितने भी भगवान के अवतार हैं, उन सब अवतारों में कृष्ण का अवतार सबसे श्रेष्ठ माना गया, उनको अवतारी कहा गया, जो वो मूल है। और बाकी जितने हैं उनके अंश हैं, कला हैं, विकला हैं, कुछ और। ये सब चीज किस चीज पर निर्धारित किया गया, ये कृष्ण ही भगवान है, किस चीज पर? दो चीज पर निर्भर होता है, एक होता है शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य। संसार विश्व ब्रह्मांड में जिनका सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, जिसे जिसका किसी का बड़ा ऐश्वर्य और शक्ति नहीं है,
वो भगवान है,
वो भगवान है। जिसमें और में वैसा धन संपत्ति ऐश्वर्य नहीं, जहां से ही सब निकलता है, जिसको और किसी से नहीं लेना पड़ता है। सूर्य की रश्मि अपनी नहीं, आग में अपनी शक्ति नहीं, ये सब दूसरे के ऊपर में निर्भर करते हैं। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर, ये स्वतंत्र इस ये नहीं है, शक्ति नहीं देने वाले की, ये नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा देखा जाता है। राम है, राम को भी कुछ लगाम है, राम राम के ऊपर क्या
मर्यादा का लगाम,
मर्यादा का लगाम है, उसे आगे नहीं बढ़ सकते। ऐश्वर्य की दृष्टि से जब विचार करते हैं, सबसे बड़ा ऐश्वर्य किसका है? आज तक यही था कि नारायण है, नारायण से बढ़ सके और किसी को ऐश्वर्य सर्वशक्तिमान है और सबको वो सब कुछ दे सकते हैं, उनको किसी से लेना नहीं। अभी तक महाप्रभु जी के पहले यही प्रचलित था, जिसको जितना एपुलेंट बेसी है, ऐश्वर्य बेसी है, शक्ति अधिक है, वो भगवान है। किंतु श्रीमद् भागवत और इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जब आए, स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो इन्होंने कहा जे नहीं, भगवत्ता का सार ऐश्वर्य नहीं प्रेम है,
माधुरी नहीं भगवत्ता।
ये प्रेम जो है, माधुर्य है, ये है भगवत्ता का सार। आदमी ऐश्वर्य से किसी का हृदय नहीं जीत सकता है, उसके प्रति श्रद्धा आएगी, श्रद्धा तो आ सकती है,
सम्मान भाव,
किंतु अपना नहीं लेगा, ये आएगा प्रेम से। इसलिए भगवत्ता का सार ऐश्वर्य नहीं हो करके माधुर्य है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऐश्वर्य से भगवत्ता का विचार मत करो, ये भगवान है, ये सबसे बड़े हैं, इन्होंने कभी जन्म नहीं लिया और ये जो कुछ चाहेंगे मन से वो कर देंगे, वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांडों का एक सेकंड में सृष्टि कर देंगे और ब्रह्मा ऐसे जैसे लोग उनकी। ये पहले जो भगवत्ता का विचार था कब से,
गुरु
जी ने सतयुग के प्रारंभ में, सतयुग के प्रारंभ के बाद जब सृष्टि आरंभ हुई, इसके थोड़े दिनों के बाद उन्हें किसकी उपासना की,
नारायण की, नारायण।
उनके सामने कौन आया,
नारायण।
नारद जी भी हैं, नारद जी ने किनकी उपासना की,
नारायण
की, ओम भगवती
वासुदेव,
यही किया। प्रहलाद महाराज ने, वो भी सतयुग के हैं, वो किसकी उपासना की,
नारायण।
और नृसिंह एक ही तत्व है उनकी, क्यों, ऐश्वर्य बहुत सर्वशक्तिमत्ता है, इसलिए लोगों ने देखा कि इनमें सब शक्ति निहित है। इसलिए साधारण लोग किसकी पूजा करता है, जिसमें बोलने की शैली है, धनी है, विद्वान है, जिसमें कुछ शक्ति सामर्थ्य है, लोग उसकी पूजा करते हैं, वही देश का नेता हो जाता है,
चमत्कार का नमस्कार
यही सब। गांधी जी का ऐश्वर्य की अपेक्षा प्रेम का भाव था, ऐश्वर्य पर नहीं गए, देखा
ना,
एक गृहस्थ, एक अत्यंत गरीब आदमी भी उनको देख करके चौकिचाएगा नहीं, यदि नहीं पहचानता है तो उनके साथ में बैठेगा, जरहट करके बैठे कह देगा कि नहीं ऐसा हुआ था। और जवाहरलाल इत्यादि जो थे उनके साथ में, उनको अधिक लोग पूजा करेंगे साधारण लोग, और जो विचारवान आदमी होगा वो क्या करेगा, वो माधुर्य की चीज़। महाप्रभु जी ने ये विचार दिया, भगवत्ता का विचार इसमें तो हो जिसमें प्रेम है, माधुर्य है। नारायण प्रेम के वशीभूत होकर के अपने सिंहासन से उठ करके, कोई भक्त आ रहा है दौड़ करके उसके गले से नहीं मिलेंगे, किसी को मैया मैयारी मुझे माखन दो ये नहीं कहेंगे, नारायण नहीं कहेंगे कि मुझको भूख लगी है, नारायण को यदि कोई कहे जगत की जो मैं आपकी प्रेयसी बन करके, आपकी स्त्री बन करके आपकी सेवा करना चाहता हूँ, कोई भक्त चाहे जो हे प्रभु हे नारायण मैं आपका सखा होऊंगा, कहे नारद जी जैसा सखा बन जाओ, नारद जी कैसे, नारद जी वहां पर बैठ करके खड़े होकर के कहे प्रभु आप कुछ दिल लगी की बातें हो जाती हैं बस यही तक
करते,
और सखा का वो जो आलिंगन करना, परस्पर में मिलना और हृदय की बात को खोलना, उनकी चीजों को खाना, मुझे बड़ी भूख लगी थी नारद तुम ले आया बस लेकर के निकाल करके खाते, ये सब नहीं होगा। तो ये मधुर की दृष्टि कृष्ण में ही है, और किसी भी भगवत तत्व में नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा भगवत्ता का विचार करो, ये श्रेष्ठ भगवान कौन है, सबके मुख कौन है, जिसमें अधिक प्रेम और माधुर्य है वो होगा। कृष्ण में दोनों चीजें हैं, ऐश्वर्य भी है चरम रूप और साथ साथ में ब्रह्मा जी को दिखलाया कृष्ण ने गैया बछड़ा हरण के समय में, अंत समय में दिखलाया। जितने भी बच्चे थे वहां और जितने भी बछड़े हैं चतुर्भुज बन गए, नारायण बन गए। इसके बाद ये पेड़ पौधे लौता जितने हैं ये सभी वैसे ही बन गए और सब लोग इनकी पाव स्तुति और पूजा कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों को देखा, थोड़ी देर के बाद में बंद करके और फिर जब आंख खुला तो देखा
घूम रहे हैं
और वैसे ही मुख सुखा हुआ है कृष्ण का और देख रहे बछड़े किधर गए, सखा किधर गए, मुख सूख गए हैं, प्यास लगी है, चेहरे पर धूल जमी गई है, बस इनके चरण लगे। एक सांस में देखा क्या ऐश्वर्य देखा, कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड को वैसा एकदम रूप देखा और साथ ही साथ में देखा क्या
माधव
बचाया था हमारे बछड़े किधर गए। तो एक साथ महाप्रभु जी ने कहा भगवत्ता का सार माधुर्य है, प्रेम है। यहाँ पर प्रेम, प्रेम का तात्पर्य क्या होता है, प्रेम से जो ऊंचा वाला है वो भी झुक जाता है और नीचा वाला है वो बढ़ करके उसके पास में बराबर समानांतर रूप में खड़ा हो जाता है। ये प्रेम का उसमें छोटा बड़ा का ये सब भाव नहीं होता है, बल्कि बड़ा का छोटा होना ही यही माधुर्य है। कृष्ण भगवान होते हुए भी नारायण के भी अंशी होते हुए और एक सखा से गले से लगते हैं और सिद्धांत से हार करके चारते हुए हंस रहे हैं और वो स्फालन कर रहा है, तुमने कभी जीता हमको, हमने तुमको कितनी बार जीता है, अरे तुमने कब जीता, तो तुम्हारे कंधे नहीं कह रहे हैं, रगड़ नहीं है यहाँ पर बैठते बैठते बतलाओ तो, और उसे हंसी की लगी था और सब सखा लोग हंस रहे हैं और गोपियों के यहाँ तो वो कैसे हो जाते हैं, यशोदा जी के यहाँ कैसे हो जाते हैं। ये जो प्रेम की माधुरी है और किसी उनको जिस रूप में भी भजन करना चाहो भजन कर सकते हैं, किसी रूप में भी मर्यादा से करो अमर्यादा से करो जैसे करो, उनके पास में जो कुछ कोई भी वासना लेकर के पहुंचा सको शत्रु भाव से उनके पास में भी गया तो भी उसको मुक्ति दे, उसे कृष्ण से संबंध होना चाहिए, क्रोध से हो भय से हो द्वेष से हो काम से हो, काम माने जगत में जो कामना वासनाएं जो होती है ना इसके द्वारा भी यदि अत्यंत गर्हित चीज है खराब चीज है काम कामुक ये भी लेकर के कृष्ण के प्रति यदि कोई पहुंचे, स्नेह से कोई पहुंचे, भक्ति के द्वारा भी पहुंचे, सभी भगवान को पाए कृष्ण को पाए, ऐसा ये सत्व है। अब इसको हम पाएंगे कैसे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस पर विचार करते हुए ये श्लोक के ऊपर में लिया है भक्त दशा में सिंधु का और इस पर एक एक स्तर के जो 8 या 9 सीढ़ियां 10 सीढ़ियां हैं ये एक एक सीढ़ी का विचार करें, यदि इनको अच्छी तरह से समझ जाए तो वो विचार कर सकता है कि हमारी भक्ति शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, हम कितने पानी में हैं, इसमें कितना पानी और कितना दूध है, ये सब आदमी एकदम बैरोमीटर जैसा वो है। इस चीज को पढ़ने से समझने से आदमी अपने आप, इसलिए हम लोग किसी की भक्ति देखते हैं जिसको जगत प्रशंसा कर रहा है और हम लोग उसके लिए आया है गया जिसके लिए संसार सब कहता है, यानी भाई ये भक्ति की एकदम चुका है सब लोग कहते हैं और हम लोग कहते हैं कि हाय उसका जीवन वो लच गया, बीच में जा रहा था शुद्ध भक्ति की धारा में और अटक गया, क्यों ये पैरामीटर है। लोग तो ज्योतिष से ये हाथ की रेखा देखा दे करके कहेंगे, हम लोग रेखा फेखा देखने की कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे देख लेंगे बस। इनको कोई इंजीनियर से इंजीनियर की अधिक जरूरत नहीं। इंटेलेक्चुअल जायंट ये लोग हैं। तो ये भक्ति के संबंध में ये इसको थोड़ा सा समझने पर अपने आप समझ लेंगे इसकी क्रिया में भक्ति है कि नहीं, इसकी ये जो भक्ति कर रहा है, फूल दे रहा है ठाकुर जी के चरणों में और इतना बड़ा बड़ा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, असल में भक्ति है कि नहीं। अब भक्ति है तो कैसे इसकी भक्ति है, सगुण भक्ति है कि भक्ति देखावटी है कि शुद्ध भक्ति है। एक आदमी कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं, चुपचाप बैठा, बल्कि कहते हैं हमारे सामने कृष्ण का नाम मत लेना, गोपियों ने उनका नाम रखा था, जानते हैं क्या, कृष्ण नहीं कहेंगे, कहेंगे उसका नाम हम नहीं लेंगे, नहीं चोर तो औसित कहेंगे, सीत माने होता है काला, औसित माने क्या,
सीत माने सादा,
हाँ औसित माने सादा, नहीं
सीत माने सादा, औसित माने क्या सादा नहीं,
काला
नहीं है,
तो औसित माने होता है काला,
सफेद नहीं है,
जो सफेद नहीं है, इसलिए काला ये नहीं कहा। अच्छा काला कहने से हमारा बिगड़ जाएगा,
काला पे भी नाम आ जाएगा,
आ जाएगा काला भी, नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, कृष्ण को कृष्ण नहीं कहेंगे, काला भी नहीं कहेंगे, काला होने से तो कृष्ण आ गया, ये भी नहीं कहेंगे। बहुत दूर से जो काला नहीं है उसको कहते हैं सफेद, तो जो सफेद नहीं है ये कहेंगे और फिर
लाल नहीं हरा की भी हो सकता
है, इसलिए कृष्ण का नाम नहीं लेते, कहते हैं नहीं उसे हमारी कोई जरूरत नहीं, उसे कोई तुलनामा हमारा हो नहीं सकता। बतलाइए इसमें ऊपर से दिखता है जो भक्ति है, जो कृष्ण का नाम लेना नहीं चाहता है, अरे नहीं नहीं उसे कोई जरूरत नहीं, तो भग जा कृष्ण का नाम लेकर के आए। अब देखिए भक्ति की एकदम एकदम इसको कौन समझेगा, कौन समझेगा, बड़ा कठिन। इसलिए भक्ति के रहस्य के तत्वों को समझना बड़ा भारी कठिन है। परम सौभाग्यवान लोग बहुत दिनों तक ऐसे व्यक्ति की यदि सेवा करें तो वो जो भक्ति की वासना, सेवा करने की वासना है कृष्ण की, शुद्ध रूप में उसके हृदय में आएगी और तब फिर उसके लिए चेष्टा करेगा, नहीं तो चेष्टा क्या करेगा, ठीक है। इसलिए पहले वो वासना आनी चाहिए, वासना में ठीक होनी चाहिए, हमारी कौन सी वासना है, एक पोस्ट वहां पर लगाए, ये हमारा उद्देश्य है जीवन का, इसको हमको करना है। लोग देख रहे हैं कि फूल दे रहे हैं, ठाकुर जी को माला पहना रहे हैं, ये विचार किया जैसे कि इस माला को हम अभी देंगे शाम को तो इनको गले में लग करके ठंड लगेगी, ये विचार किया, विचार तक किया अपनी दृष्टि से, ये माला देना उनको सम्मान देना है, ये तो ठीक है यहाँ तक, और वहां तक वो भक्ति है, किंतु जो और प्रौढ़ जो भक्त हैं वो क्या विचार करेंगे, इस चीज को देने से इनको सुख होगा कि कुछ गड़बड़ी होगी, ये इसको तो विचार नहीं किया। इसलिए ये विचार भक्ति के ऊपर में विचार करना है प्रत्येक स्तर पर, तब वो समझ सकेगा कि जो मैं कर रहा हूँ कैसी भक्ति कर रहा हूँ, कितना भक्ति कर रहा हूँ, और ये व्यक्ति जो कर रहा है ये जो है ये भक्ति है कि नहीं है, तब उपचार, और नहीं तो जिस स्टैंडर्ड में है वो, जिस लेवल पे है उसी को कहेगा कि हम सबसे बड़े भक्तिमान हैं, और वैसा ही किसी को देखेगा कहे ये सबसे बड़ा भक्त है, भक्ति के अंतर की चीजों को वो पकड़ लेंगे कि कृष्ण की सेवा की भक्ति है। इसके लिए ये श्लोक बतला रहे, कितना हुआ,
50 मिनट,
आज मुख बंद ही समझ लीजिए, अब थोड़ा सा हम आरंभ कर देते हैं कि आज तक महाप्रभु से पहले जितने लोग थे यदि भगवान का भजन भी करते हैं, शुद्ध रूप से भी करते हैं, तो ऐश्वर्य को देख करके और उसी को भगवत्ता मान करके, जहाँ पर उसकी अंतिम बिंदु है ऐश्वर्य की, उसे बढ़कर के ऐश्वर्य नहीं है, बस उनको भगवान, ऐश्वर्यमय भगवान को पाने के लिए जो साधन होगा वो भी ऐश्वर्यमय होगा, ये भी समझिए। एक धनी आदमी को प्रसन्न करने के लिए क्या चीज चाहिए, नहीं वैसे चीज चाहिए ना। और जो व्यक्ति एकदम गरीब आदमी है उसको प्रसन्न करने के लिए मीठी बात, एक पानी दे दो, एक कुछ
गुड़ दे दो,
प्रसन्न हो जाएगा। किंतु बहुत धनी आदमी है, बहुत धनी आदमी, उसको उसी प्रकार से रिसेप्शन देना होगा
जो जैसे उसको स्टैंडर्ड।
तो नारायण को प्रसन्न करने के लिए कठोर ध्रुव जैसी तपस्या, प्रहलाद महाराज जी तपस्या, कठोर वैराग्य, ये सब जो संसार में हो नहीं सकता, ऐसा यदि कोई करे 10,000 वर्ष 88,000 वर्ष तक बिना खाए पिए रहो और भगवान का मंत्र जपो ऐसे बैठकर संसार को त्याग करके, तब तो उनको पाएगा। जैसे नारद जी ने कितनी 1,000 वर्ष तपस्या की,
तो ध्रुव महाराज ने थोड़ी सी की
6 महीना, किंतु देखो जो खाया नहीं, पानी नहीं पिया, हवा नहीं लिया, ऐसा करो तो 1 मिनट
बच्चे भी थे
ना,
छोटी उम्र से प्रश्न नहीं है। हम 5 मिनट 1 मिनट हम सांस नहीं, हमने कल पर तो हमने देखा घड़ी हाथ में थी, हमने देखा जैसे मैं एक सांस कितना रोक सकता, तो मैं देखा वो कांटा सेकंड का भी चल रहा है, तो कांटे में देख करके देखा और सांस रोक लिया, देखा जब कि 30 पर आया सेकंड तो दम फूलने लगा, आया तब तो धड़फड़ करने लगा, तभी जो उसे रोका रहा, जब 60 किसी प्रकार से 60 पूरा किया तो उसमें झटपट अब रहा नहीं गया। तो 1 मिनट भी हम लोगों का ये नहीं रहता। अब बतलाओ जैसे उन्होंने 1 महीने या 2 महीना अंतिम वाला सांस पे नहीं रोका, सांस एकदम रोक दिया, प्राणवायु को रोक दिया, पानी की तो बात ही रही, हवा तक नहीं दिया और समाधिस्थ हो गए। देखने में मालूम होता है ये कम समय, कितनी कठोर चीज है, जो आज का व्यक्ति हम कहते हैं 1,000 वर्षों में नहीं,
ये
नहीं
किया था,
कोमा
की तरह नहीं होगा,
कोमा चले गए,
कोमा
जैसे आजकल डॉक्टरी से कोमा में चले गए,
मर रहे हैं उस समय, वो क्या करें कहाँ, ये उसमें भीतर में भक्ति की क्रिया है,
क्रिया चल रही है,
वो क्रिया खूब जोर से चल रही है, इसलिए वो भूल गए,
वो दर्शन देख रहे हैं अंदर और सांस लेना भूल गए।
तो इसलिए कितनी कठोर तपस्या, वसुदेव और देवकी जी ने कश्यप और अदिति के रूप में 60,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान का मंत्र जप रहे हैं और अंगूठा ऐसे नीचे लगा दिया, हाथ का ऐसे, और उसके ऊपर में पैर खड़ा कर दिया, ऊपर
उल्टे हो गए,
उल्टे एकदम दोनों, और 60,000 वर्ष तक
पति पत्नी
देवताओं के मन से 60,000, देवताओं के मन से 60,000
इतना दिन तक कब नहीं करता हूँ। तब तो ऐसे आश्चर्य, तो नारायण उनके बेटे होकर के आए, वो भी सेवा लिया नहीं, और उनको चतुर्भुज के रूप में उनको दर्शन दिया, कहा अच्छा अब हमारे समान तो कोई है नहीं, मैं तुम्हारा बेटा होकर के। तो ये देखो कितनी तपस्या, ये ऐश्वर्ययुक्त भगवान को पाने के लिए ऐश्वर्ययुक्त कठिन कठोर तपस्या करें। उस समय भगवान महाप्रभु जी आए, भागवत का उदाहरण लेकर के बोले ये भाई ये मत करो, सब कलयुग में संभव नहीं, बस तुम लोग नाम का आधार लो और कृष्ण को अपना बेटा मान लो, कृष्ण को अपना सखा मान लो, कृष्ण को कि अपनी बन जाओ प्रेयसी, उनको अपना प्रेमी मान लो, अपना प्रियतम उनको मान लो, और उनको कि